नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दे रही है राज्य सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ साझा करेंगे विचार। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले एचआरटीसी पेंशनरों को बकाया पेंशन जारी करने के दिए आदेश। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अधिकारियों को सर्दियों के मौसम में बर्फबारी व बारिश से निपटने के लिए सभी प्रबंध पूरा करने को कहा। और 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में सम्पन्न, प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिला को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया है, जिसके दृष्टिगत क्षेत्र में अनेक पर्यटन परियोजनाओं को साकार रूप दिया जा रहा है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की तंगरोटी पंचायत में कल सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत जन शिकायतें सुनने के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपए जारी किए हैं और इसका कार्य प्रगति पर है।
कांगड़ा एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन जिसमें हमने अभी 460 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, इन 4-5 महीनों में हम पूरे कांगड़ा की लैंड एक्विजिशन का कार्य शुरू कर देंगे और जल्दी ही एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा बनना चाहिए टूरिज्म कैपिटल के नाते, उस एयरपोर्ट को बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। जिस दिन एयरपोर्ट बड़ा हो जाएगा आपकी जमीन की कीमत 3 गुना हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि एम्स की तर्ज पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और अटल आयुर्विज्ञान चिकित्सा अस्पताल चमियाना में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए 28 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 30 नवंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को एचआरटीसी पेंशनरों की पेंशन की अदायगी करने के आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई से पहले एचआरटीसी पेंशनरों को उनकी बकाया पेंशन हर स्थिति में जारी की जाए। एचआरटीसी पेंशनर समस्या समाधान मंच की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एचआरटीसी और सरकार को नोटिस जारी कर 19 दिसंबर से पहले जवाब दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मनदीप चंदेल ने दलील दी कि नियमों के अनुसार पेंशन हर महीने की पहली तारीख को मिलनी चाहिए, लेकिन कई महीनों से पेंशन में हो रही देरी से पेंशनरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
कोर्ट ने एचआरटीसी को भी सरकार को भी नोटिस किए हैं कि आप इसमें जवाब फाइल करें और जवाब फाइल करने के साथ साथ बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो 19 दिसंबर है उससे पहले पहले आप इसमें इनको इनकी पेंशन रिलीज करें। याचिका में ग्राउंड्स थे कि जब भी कॉरपोरेशन 1974 के अंदर बनी, इसमें जो हमारे हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कुल्लू मंडी जो एसोसिएशन थी उनके जो जब मर्ज किया गया उसमें लिखा है कि इनको जो भी पेंशन दी जाएगी वो एज पर सीसीएस पेंशन रूल के हिसाब से ही दी जाएगी। और जब एचआरटीसी ने पेंशन स्कीम को भी अडॉप्ट किया 1995 के अंदर तो उसमें भी लिखा है कि जो भी इनको पेंशन दी जाएगी वो एट पार विद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही दिए जाएंगे।
शिमला के भट्टाकुफर चौक में जमीन धंसने की घटना का निरीक्षण करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने कल शाम मौके का निरीक्षण किया। यह टीम आज भी स्थानीय प्रशासन के साथ फिर से घटनास्थल का निरीक्षण करेगी। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि जिला प्रशासन ने पत्र लिखकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस घटना के बारे में सूचना दी थी और निरीक्षण करने के आग्रह किया था। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अधिकारियों को सर्दियों के मौसम में बर्फबारी और बारिश से निपटने के लिए सभी प्रबंध तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। धर्मशाला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों से भारी बर्फबारी की स्थिति में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने और चिन्हित स्थानों पर बर्फ हटाने के लिए पर्याप्त मशीनरी व श्रम शक्ति तैनात करने को कहा। ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव ने आपात स्थिति में समयबद्ध प्रतिक्रिया पर बल देते हुए संबंधित विभागों से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए ताकि जान माल का नुकसान न हो। संजय गुप्ता ने मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों को समयबद्ध और सरल भाषा में जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ईंधन, खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य जरूरी वस्तुओं का स्टॉक पहले से रखे जाने पर भी बल दिया। गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी कल एक शानदार अंदाज में संपन्न हो गया। प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को सिनेमा में उनके 50 वर्षों के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय फिल्म उद्योग जगत ने इस वर्ष दिवंगत हुए धर्मेंद्र, कामिनी कौशल, सुलक्षणा पंडित और सतीश शाह को उनके योगदान के लिए याद किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी महिलाओं और युवा रचनाकारों को सशक्त बनाने में सफल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से देशभर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से खाद्य क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों पर कर की दरें कम कर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। इन सुधारों के तहत पराठा, ब्रेड, रोटी, पनीर और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध जैसे खाद्य पदार्थों को अब पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। साथ ही मक्खन, घी, कंडेंस्ड मिल्क और जैम पर अब सिर्फ 5% कर लग रहा है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों में इन उत्पादों की मांग बढ़ गई है। इसके अलावा नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, पीने का पानी, सॉस और चीनी पर लगने वाले 12% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से खाद्य पदार्थों की कीमत कम हुई है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों के खर्च का बोझ कम हो रहा है।
सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर द्वारा एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम के तहत कल बिलासपुर जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्री नैना देवी जी में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर के प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान आईटीआई प्रशिक्षुओं और आंगनवाड़ी वर्करों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इधर केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला द्वारा कल समर हिल राजकीय आईटीआई के प्रशिक्षुओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई 4 श्रम संहिताओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, आरएसएस पर टिप्पणी, सदन में हंगामा, नारा लगाने में पहुंचा विपक्ष, तीखी नोकझोंक। दैनिक जागरण लिखता है, मंत्री की संघ पर टिप्पणी से नाराज भाजपा का हंगामा। पंजाब केसरी का शीर्षक है, धर्मशाला में पेंशनर्स का प्रदर्शन, चक्का जाम। दिव्य हिमाचल लिखता है, पेपर लीक अब गैर जमानती अपराध। हिमाचल दस्तक का कहना है, हिमाचल सरकार को केंद्र से मिली 350 करोड़ रूपये ऋण लेने की मंजूरी। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सूखी ठंड, नहान को छोड़ सभी शहरों में न्यूनतम पारा 8 डिग्री से नीचे। फिर हाईकोर्ट पहुंचा संजोली मस्जिद विवाद, वक्फ बोर्ड की जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती, अमर उजाला की एक अन्य खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दे रही है राज्य सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ साझा करेंगे विचार। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले एचआरटीसी पेंशनरों को बकाया पेंशन जारी करने के दिए आदेश। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अधिकारियों को सर्दियों के मौसम में बर्फबारी व बारिश से निपटने के लिए सभी प्रबंध पूरा करने को कहा। और 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न, प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।